दुविधाधारी ये मन दुखदाई दुविधा ना से प्रभु की रख गई। ये मन की दुविधा क्या है? मन के अंदर आप देखिए सदैव ही एक अनिश्चय की हालत बनी रहती है और ये मन जहां सुख की आशा करता है वहीं से इसको कभी भी दुख मिलना शुरू हो जाता है। इसीलिए जब तक मन है तब तक ये दुविधा मन के अंदर बनी ही रहती है। बाहर से देखने में कई चीजें हमको आकर्षित करती हैं। कई बार ऐसा भी लगता है कि शायद मैं ही दुखी हूं, मैं ही बेचैन हूं। जिनको देख रहा हूं वो बड़े चैन में, वो बड़ी अच्छी कंडीशन में, परंतु ये भी दुविधा ही है। निश्चय हमारा यहां भी ठीक नहीं बैठ रहा। कई बार ऐसा देखा होगा जिस दृश्य को देख रहे हैं बड़ा सुहावना दृश्य प्रतीत होता है, परंतु उसके पीछे क्या दुख छिपा हुआ है उसका हमको पता नहीं लगता। मान लिया कहीं एकांत में या जंगल में एक स्थान पर खड़े पर देख रहे हैं एक हिरण की डार हरी हरी घास चल रही है, यह बड़ा सुहावना दृश्य है। पास ही जल प्रवाहित हो रहा है। मेरे मन में कल्पना आ रही है कितना सुंदर दृश्य है, इन हिरण का कितना सौभाग्य है कि ऐसे स्थान पर ये विचर रहे। परंतु यदि हिरण के मन को ही देख लें, जरा उसकी कल्पना करके देख लें उस पर क्या बीत रही है। यदि आपने कभी भी ध्यान से देखा होगा तो ऐसा आपको प्रतीत होगा कि हिरण उस दृश्य के अंदर आनंद तो ले रहा है, उसको मनचाहा भोजन मिल रहा है, मनचाहा जल मिल रहा है, मनचाहा स्थिति मिल रही है, लेकिन कहीं भी झाड़ी में या किसी भी जगह खेत में जरा सी भी खटपट होने लगे या जरा सा भी कोई कहीं से आवाज आने लगे तो सारे हिरण एकदम से चौकन्ने हो गए। वो अचानक नहीं हो गए, उनकी ये हालत सदैव ही रहती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि शिकारी हमारा कभी भी शिकार कर सकता है, जंगली जानवर हमको कभी भी मार के खा सकता है, ये उनका अनुभव बोल रहा है। इसीलिए वो सुहावना दृश्य हमारे लिए भले ही हो लेकिन हिरण की जो मानसिक स्थिति है उसको यदि देखें तो उसके मन में दुविधा ही रहती है। वो कभी भी चैन से ना खा सकता है ना घूम सकता। और केवल आप जंगल के जानवर की ही बात मत करिए, हमको कई बार लगता होगा पक्षी बड़े आनंद से घूमते हैं, आनंद से विचरते हैं, इनको कोई बंधन नहीं। लेकिन जो पक्षी अपने बच्चों को घोंसले में पालता है उसके मन की हालत में जरा कल्पना करके देख लीजिए आप। उसको सदैव मन के अंदर ये भय बना ही रहता है, क्योंकि पेड़ों पर भी आपने देखा होगा सर्प चढ़ जाते हैं, घोंसले में अंडों को खा जाते हैं, बच्चों को खा जाते हैं, और कोई दूसरे जानवर आ जाते हैं, दूसरे हिंसक पक्षी भी ऐसे होते हैं जैसे कि बाज है जो पक्षियों को ही खा जाते हैं। तो पक्षी भी यदि हम उनके मन के दृष्टिकोण से देखें तो वो भी अपने घोंसले में भी चैन से नहीं रहते, अपने बच्चों की चिंता होती है, अपनी सुरक्षा की चिंता होती है, बच्चों के लिए खाने पीने की चिंता होती है। तो मन के द्वारा वो खुद भी कभी भी चैन में नहीं रहता। एक चूहा जो बिल के अंदर रहता है, विचार करो, ये आम प्रकृति की जो घटनाएं हैं या दृश्य हैं जो देखने में आते हैं, मैं समझता हूं कि शायद मैं ही सबसे ज्यादा दुखी हूं, लेकिन प्रकृति में हर जीव दुखी है, हर जीव बेचैन है, ये दृष्टि सपुरुष हमको देते हैं। एक बिल के अंदर तो चूहा सुरक्षित रहना चाहिए, घर है उसमें, लेकिन हम सब जानते हैं सांप चूहे के बिल में ही रहता है, उसको तैयार घर मिल जाता है और चूहा उसका भोजन भी बन जाता है, उसका घर भी बन जाता है बिल में। तो सुरक्षित स्थान चूहे के लिए कोई भी नहीं। सारी प्रकृति में मेरे लिए यही दशा है, मेरे लिए सारी प्रकृति में सुरक्षित स्थान कोई भी नहीं। मनुष्यों के बीच में भी मैं निश्चिंत होकर नहीं रह सकता, कितना चोरी का डर रहता है, कितना धोखे का डर रहता है। 10 साल से भी कोई व्यक्ति आपके पास काम कर रहा है तब भी आप पक्का विश्वास नहीं करते ये ठीक ही है, पता नहीं इसके स्वभाव में कब परिवर्तन हो जाए, इसकी संगत कब बिगड़ जाए, कब ये हमको धोखा दे जाए। तो हर मनुष्य के, हर जीव के मन की यही हालत होती है, वो निश्चिंत होकर देह के द्वारा इस सांसारिक जीवन नहीं जी पाता, अंदर से दुविधा बनी रहती है, सुख दुख की बेचैनी बनी रहती है। इसीलिए वो कहते हैं ये दुविधा नाश कैसे होगी, दुविधा नाशे प्रभु की रजगा। ये प्रभु खुद हमको ये बता रहे हैं जो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, ये वाणी तो नहीं है, तो प्रभु ही हमको गाइड कर रहे हैं कि मन की दुविधा से यदि मुक्त होना चाहते हो तो प्रभु की कीर्ति गानी पड़ेगी, अर्थात प्रभु पर भरोसा करना पड़ेगा, प्रभु में मन लगाना पड़ेगा। और जो बुद्धि है जो निश्चय करती है, जो निर्णय करती है, इस बुद्धि का निश्चय इस वाणी के अनुसार बदलना पड़ेगा, तभी आपके मन की दुविधा दूर हो सकती है, या यूं कहें कि जीवन की बेचैनी से आपको तभी छुटकारा प्राप्त हो सकता है। क्योंकि शरीर और संसार ये कभी भी स्थायी नहीं है, कभी भी स्थिर नहीं है, इसमें निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं। और शरीर और संसार के बीच में जो संपूर्ण प्रकृति है, संपूर्ण वातावरण है, इसमें भी निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं। हमारे साथ जो मनुष्य है उनके स्वभाव में भी निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं। अब बताइए हर चीज में जब इतने परिवर्तन हो रहे हैं तो मेरे अंदर स्थायी शांति, स्थायी सुख, स्थायी संतोष कैसे आ सकता है। इसीलिए यदि मैंने गुरु की बात नहीं सुनी, ईश्वर की बात नहीं सुनी, या वाणों की वाणी की बात समझने की कोशिश नहीं करी, तब शांति का दिन मेरे पूरे जन्म में कभी भी नहीं आया। हर हालत में मैं बेचैनी लेकर जीऊंगा और बेचैनी लेकर ही संसार से जुदा हूं, और जो संस्कार मैंने बनाए हैं वो सारे मेरे मन के अंदर सुरक्षित रहते हैं, इसलिए वो नई देह तैयार कर लेंगे और फिर नई देह में भी मेरी यही प्रक्रिया चलती रहेगी, इसी बेचैनी को रखकर मैं जीवन जी रहा हूं। तो क्यों ना ये मानव जन्म जन्म मुझको मिला है और इस मानव जन्म में मुझको पूर्ण गुरु का मार्गदर्शन भी मिला है, ऐसे गुरु की संगत भी मिली है जहां ये बात मैं सीख सकता हूं, फिर भी मैं चूक जाऊं और दुनिया की नकल करके धर्म का पालन करता रहूं, दुनिया की नकल करके धर्म की बातें करता रहूं, तो उसी प्रकार धोखा खाता रहूंगा जैसे कि सारे संप्रदाय, सारे धर्म जो जगत में प्रचलित हैं एक दूसरे को धोखा ही दे रहे हैं, एक दूसरे को बेचैन ही कर रहे हैं। धर्म के नाम पर क्या नहीं हो रहा है आप सब जानते हैं। तो हम शारीरिक धर्म के शिकार हो जाते हैं, हमको आत्मिक धर्म मासिक धर्म का पता ही नहीं लगता। धर्म का वास्तव में संबंध ही से कि मन की दुविधा खत्म हो जाए। संसार की दुविधा तो खत्म हो ही नहीं सकती, मन की दुविधा खत्म हो सकती। उसके लिए वाणी गाई कर रही है, दुविधा ना से प्रभु कीरत गाई। इसका मतलब आप यदि अपनी मानसिक बेचैनी से मुक्त होना चाहते हो तो संसार में मनुष्य के लिए एकमात्र मार्ग कोई है तो वो ईश्वर का रास्ता है। अन्यथा बार बार पैदा होते रहोगे, बार बार बड़े होते रहोगे, बार बार संसार के भोग संसार के साधन इकट्ठे करते रहोगे और हमेशा ही बेचैनी लेकर जीते रहोगे। और एक बहुत बड़ा धोखा जो आपके जीवन में आपके साथ होता है तो क्या होता है कि आशा करता हूं जीने की मौत का सामना है। तो पूरा जीवन मेरे अपने लिए ही धोखा बन जाता है, मैं दूसरे का क्या कर जाऊंगा। इसीलिए प्रभु कृपा करके अवतार लेते हैं, गुरु रूप में आते हैं, शास्त्रों की रचना करते हैं। ये सारी क्रिया कौन कर रहा है मेरे लिए, ये प्रभु ही कर रहे हैं। जिस प्रकार मन मेरा अंतर्यामी है, इस प्रकार प्रभु भी मेरे अंतर्यामी है। मेरी मानसिक बेचैनी को यदि कोई समझता है या तो मैं खुद समझता हूं या प्रभु समझता हूं। इसीलिए वो क्योंकि मेरे अपने हैं, मेरी जान है वो, इसीलिए वो मेरा मार्गदर्शन भी करते हैं कि तेरी बेचैनी कैसे दूर। तो आगे कहते हैं, साजन सिमरे मन मंगल पाई, बिन भगवंत नित आगे जाए। यदि ये मनुष्य प्रभु का स्मरण करने लगे, जीवन में सबसे बड़ी आवश्यकता उसकी प्रभु बन जाए, उसके बुद्धि का विश्वास यहां तक पहुंच जाए या बुद्धि का स्पष्ट निर्णय हो जाए कि प्रभु के बिना मेरा गुजारा है नहीं, उसकी बुद्धि का निर्णय हो जाए, तब कहते हैं तब उसका मन मंगल प्राप्त कर सकता है, मन के अंदर चैन आ सकता है। तो चैन हम सब जानते हैं कैसे आता है, कि हम जो स्वार्थ का जीवन व्यतीत करते हैं इसकी जगह मैं दूसरे के कल्याण की, दूसरे का दुख दूर करने की कोशिश करता हूं, ये जीने का तरीका बदल जाता है। और जो मकारियां करता था संसार में, मैं सीधा साधा इंसान बन जाता हूं। क्यों बन जाता हूं? क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी की गाड़ी ईश्वर के अधीन चलती है, दुनिया के अधीन नहीं चलती। ये उसके विश्वास की स्थिति बन जाती है। जो सत्पुरुष हुए कष्ट क्या उनके शरीर पर नहीं आया, विचार करते थे मैं तो मंदिर में जाके माथा टेक लेता हूं, जो मेरा इष्ट देव है उसके आगे प्रार्थना कर लेता हूं और प्रसाद चढ़ाते मैं कल्पना कर लेता हूं कि मेरी सुन ली है, कभी ये विचार करने को तैयार नहीं होता। जो सत्पुरुष है, जो खुद अवतार है, उसके शरीर की दशा तो देखो जरा, मोहम्मद साहब को कितने युद्ध करना पड़े, ईसा मसीह का लोगों ने क्या हल कर दिया, विचार करते थे तो सत्पुरुष थे। लेकिन उनकी देह का ये प्रारंभ था, हमने उनमें अंतर क्या है, वो देह से देह के रहते हुए भी मुक्त थे, उनका निवास ईश्वर के अंदर था, उनका मन ईश्वर में लीन था, मन की सत्ता अलग नहीं थी जैसे कि मेरी मन की सत्ता अलग है, मैं अलग हूं। उनके मन की सत्ता ईश्वर के साथ एक हो चुकी थी। तो शरीर प्रारब्ध के अधीन उनका भी है, मेरा भी, मुझको भी लोग फांसी पे चढ़ा सकते हैं, मेरा भी कत्ल कर सकते हैं, मुझको भी युद्ध करना पड़ सकता है, जैसे अर्जुन की हालत थी। कृष्ण साथ हैं लेकिन युद्ध से क्या वो बच पाया, वो नहीं चाहता था कि मुझको युद्ध करना पड़े, लेकिन कृष्ण समझाए हैं उसको, तू चाह तो रहा है मैं युद्ध ना करूं और ये लोग जो है ये कष्ट में ना आए, लेकिन सत्य ये है कि ये तेरी देह का प्रारब्ध है, तुझको युद्ध करना ही पड़ेगा, ऐसी परिस्थितियां तेरे आगे पैदा हो जाएंगी। तो अब बताइए, इतना भयंकर कर्म साक्षात कृष्ण जो साथ मौजूद है, मैं तो कृष्ण के दर्शन करके कल्याण चाहता हूं, लेकिन जिसके साथ कृष्ण खुद मौजूद है वो उसके प्राप्त को नहीं बदल पा रहे। वो खुद बता रहे हैं ये अटल सिद्धांत है प्रारब्ध, जैसे भावी क्यों चलाए अटल हुक्म जानो प्रभु भाई। ये प्रभु का अटल हुक्म है कि जिस प्रारब्ध को लेकर देह पैदा होती है, दुनिया की कोई ताकत उस प्रारब्ध को मिटा नहीं सकती, यहां तक कि सतपुरुष के शरीर का भी प्रारब्ध नहीं मिल सकता। मैं क्या चाहिए, इसीलिए दुख से फिर भी मैं बच सकता हूं। कैसे बच सकता हूं, मैं अंदर मन के साथ एक होने के बजाय प्रभु के साथ एक हो जाऊं, ये वो दुख खत्म करने का रास्ता है। अब बताइए, दुनिया का एक भी सतपुरुष ऐसा नहीं हुआ, पूरी दुनिया में एक भी सतपुरुष ऐसा नहीं हुआ जिसने कहा हो ईश्वर बाहर है, उसकी बाहर उपासना है। चाहे वैदिक काल से लेकर जितने शास्त्रों की रचना हुई, चाहे वो बाइबल की रचना हुई, चाहे वो कुरान की रचना हुई, या गीता की रचना हुई, या रामायण की रचना हुई, कोई भी किसी सतपुरुष ने शास्त्र की रचना की है, चाहे वाणी की रचना हुई, चाहे गुरु ग्रंथ साहब की रचना हुई, आप पढ़कर तो देखो लिखा क्या है। मैं धर्म ग्रंथ की ही पूजा शुरू कर देता हूं, मेरी बुद्धि में इतना अंधेरा है। अरे धर्म ग्रंथ तो कागज है ना, वो उसकी कीमती क्या चीज है, उस धर्म ग्रंथ के अंदर जो वाणी लिखी हुई है प्रभु की, वो कीमत है, वो तेरा गुरु है, तुम ग्रंथ को ही गुरु बना ले। तो ऐसी बुद्धि हमारी इसका पतन हुआ है कि ये सोचने को ही तैयार नहीं कि सही क्या है गलत क्या है। तो विचार करके देखो, क्या कागज भी कभी गुरु हो सकता है, वाणी गुरु है। तो सारी जिंदगी कागज को तो संभालते रखता हूं, वाणी की तरफ कभी ख्याल भी नहीं करता, इसमें लिखा क्या है, इसमें निर्णय क्या दिया हुआ। यदि गुरु ग्रंथ साहब कोई वाणी का निर्णय पढ़े, तो आज के वक्त में जो महाराज जी की वाणी आई और जो गुरु ग्रंथ साहब में वाणी है, वहां तो कोई अंतर ही नहीं, एक ही चीज लिखी हुई। लेकिन मेरी बुद्धि का विकास क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं अंधविश्वासी बना रहा, उसी आडंबर को सीखता रहा जो दुनिया मुझे सिखाती रही, उसी धर्म को सीखता रहा जो लोग मुझे सिखाते रहे। धर्म केवल गुरु सिखा सकता है, याद रखिए, गुरु के आपके पास बैठा रहेगा सिखाने के लिए। इसीलिए गुरुवाणी गुरु वचन ही आपका ठीक मार्गदर्शन करते हैं। यदि आपने उसको जिंदगी में समझने की कोशिश ही नहीं करी, इसकी जरूरत ही नहीं समझी, तो आप धर्म के नाम पर केवल पाखंड करते रहेंगे, धर्म के नाम पर केवल धोखा खाते रहेंगे, उसी प्रकार धोखा खाते रहेंगे जिस प्रकार हूं मैं जीव हूं, मैं जिंदा वस्तु, लेकिन सारी जिंदगी अपने आप को केवल देह समझता रहा, मुझे होश ही नहीं रहा कि देह मरने के बाद मैं बच जाता हूं। और मैं ही नहीं बच जाता हूं, देह मरने के बाद मेरे संस्कार बच जाते हैं, सारे संस्कार बच जाते हैं, और जिन कर्म फल को मैं नहीं भोग पाया वो सारे कर्म फल भी बच जाते हैं, और जितने गुण है वो भी बच जाते हैं, जितने अवगुण है वो भी बच जाते हैं। ये सारे मेरे मन और बुद्धि में सुरक्षित रहते हैं, ये सब प्रभु के अधीन रहते हैं। इसीलिए प्रभु जब मुझको नई देह प्रदान करते हैं, तो सारा मेरा ये खजाना, सारी मेरी प्रॉपर्टी मेरे संग बचपन से ही मुझको मिल जाती है, जिसमें प्रारब्ध भी शामिल होता है, जिसको दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती। ये वाणी की गारंटी है कि जैसी भावी त्यों चलाए अटल हुक्म जानो प्रभु का है। ये प्रभु का कॉन्स्टिट्यूशन है जो बदला नहीं जा सकता। संसार का कॉन्स्टिट्यूशन, देश का कॉन्स्टिट्यूशन तो क्रांति हो जाए देश में बदल जाता है, कि ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है कि मनुष्य को ताकत दी ही नहीं गई है, प्रकृति को ताकत दी ही नहीं गई है कि इस ईश्वर के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई बदल सके। तो ऐसा अटल सिद्धांत जो आदि काल से चला है, आदि अनंत काल तक चलता रहेगा, उसके प्रति मैं इतना लाभ रहा कि मानव जन्म लेकर उसको सीखने की कोशिश ही कभी नहीं करी मैंने। मैं लोगों की नकल कर करके अपने मन मानसिक धर्म पालन करता रहा और समझता यह रहा कि मैं बड़ा धर्मवान। जब तेरी पूजा ही ठीक नहीं है, तेरी बुद्धि का ज्ञान ही ठीक नहीं है, तो जिंदगी तेरी ठीक चलेगी कैसे? इसीलिए हम किसी वहम में ना जिए, अंतर्यामी ईश्वर की उपासना करना सीखें। उसी के लिए वाणी कह रही है, प्रगट चरण की सेव कमाऊं, दीन दयाल दीजो सत था। देखो वाणी क्या कह रही है, प्रगट चरण की सेव कमाऊं, दीन दयाल दीजो सत था। हाँ कहते हैं ठिकाने को, सत कहते हैं परमेश्वर। तो वो ठिकाना मिल जाए कि मेरे मन के अंदर तृप्ति हो, दुनिया की कोई ताकत से उस तृप्ति को खत्म ना कर सके, उसमें कोई परिवर्तन ना कर सके। तो वो कब कैसे मिलती है? प्रगट चरण की सेवा, प्रगट चरण की सेवा करने को मुझे मिल जाए। अब आप कहोगे इसका मतलब तो ईश्वर का आकार होता है, तभी तो उसके चरण प्रकट होंगे। ये मतलब नहीं, महाराज जी ने खुद लिखा है कि प्रभु के चरण का अर्थ क्या है। तो नाभि के अंदर जो प्रभु का निवास स्थान है, नाभि से जब गुरु मंत्र का जाप करते हो तो इसके अंदर एक प्रक्रिया होती है, अर्थात ये खुलता है, प्रभु कृपा से खुलता है। तो उसके अंदर आपको आत्मध्वनि का अनुभव होता है, इसको नाद कहते हैं। इसको माजी ने लिखा संत अभिलाष ने, ये प्रभु के चरण। तो ये चरण मेरे अंदर प्रकट हो जाए, उन चरणों की मुझे सेवा करने को मिले, अर्थात उसमें ध्यान लगाने को मिले। तो सिमरन फिर आगे चलकर भजन और ध्यान में बदल जाता है, ध्यान फिर समाधि में बदल जाता है, तब जाकर ईश्वर में मैं स्थित हो जाऊंगा। वाणी क्या प्रार्थना करेगी? प्रगट चरण की सेव कमाओ। अब आपने गुरु मंत्र का जाप ही नहीं करना है तो प्रगट चरण मिलेंगे कहां से? आने वो अंदर ईश्वर कुंडली रूप में या नाद रूप में उसका अनुभव होगा कैसे आप? तो मन मेरा अंदर है, बेचैनी मेरे अंदर है, बुद्धि मेरी अंदर है, उसका निश्चय मेरे अंदर है, और प्रभु का निवास ही मेरे अंदर ही। इसीलिए सारा धर्म का बात तो अंदर बाहर का रखा हुआ, बाहर केवल धर्म के नाम पर भटकना है, इसके अलावा कोई बाहर धर्म नहीं होता, धर्म सारा अंदर है। जहां ईश्वर है वही धर्म, जहां मैं हूं वही धर्म। इसलिए मैंने अंतर्यामी ईश्वर की उपासना करनी है, उसकी बात माननी है। कैसे माननी है? वही गुरु रूप में अवतार लेकर जगत गुरु बनता है, सदगुरु बनता है, उसके द्वारा शास्त्रों की रचना होती है, वाणी प्रकट होती है। जब उसके अर्थ को मैं ठीक समझता हूँ और उसके अनुसार वो उपासना करता हूँ, तब मेरा कल्याण होता है। मन की दुविधा नाश होती है। ओ